पृष्ठ संख्या 112, भाषा और अलंकृति। सरोज स्मृति की रचना 1935 में हुई थी। यह दौर एक ओर हिंदी कविता में संक्रमण का था, दूसरी ओर निराला के जीवन तथा साहित्य क्षेत्र से संबंधित उनकी हताशा का। निजी जीवन में वह पत्नी की मृत्यु की त्रासदी झेल चुके थे, किंतु तब वे उतना नहीं टूटे थे जितना पुत्री के निधन पर। इस घटना ने तो उन्हें एक प्रकार से ढहा दिया। साहित्य जगत में उनकी उपेक्षा अब भी हो रही थी। आर्थिक तंगी की स्थिति पहले से चली आ रही थी। इस सर्वतोमुखी पराजय बोध ने निराला को झकझोर दिया। परिणामतः वे उद्धत और व्यंग्यशील हो उठे, किंतु इसी के साथ उनमें आरंभ से ही जो स्वभावगत रचनात्मक संयम था वह भी सजग था। यही कारण है कि सरोज स्मृति में गंभीरता और अगंभीरता का परस्पर विरोधी शिल्प लक्षित होता है। कहीं वह अतिशय भावनाशील हो उठते हैं तो कहीं अत्यंत उग्र। यह द्विधा प्रवृत्ति उनकी भाषा में भी लक्षित होती है। दो उदाहरण दिए जा रहे हैं जो उनकी दो परस्पर विरोधी मना स्थितियों के परिचायक हैं, भाषा के संदर्भ में भी। एक एक कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेन, डॉट 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 डॉट। वह जो यमुना के से कछार, पद फटे पिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों, पिए तेल चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध। दो उन्मन गुंज सज हिला कुंज, तरुपल्लो कलिदल पुंज पुंज, बह चली एक अज्ञात वात, चुमती केश मृदु नवल गात। प्रथम उद्धरण में आक्रोश है और व्यंग्यात्मक निंदा पर घृणा है, जबकि द्वितीय में माधुर्य ही माधुर्य है। प्रथम में शब्द योजना कर्कश है। प्रथम पंक्ति में का अनुप्रास और कुलांगार शब्द तथा आगे विवाही चमरौधे जूते आदि शब्द और कुरुचिपूर्ण भी। मुहावरा, जिस पत्तल में खाना उसी में छेन करना तथा मुहावरे पर आधारित सादृश्य विधान, उधार खाए के मुख ज्यों भी निम्न श्रेणी का है। दूसरा उद्धरण पहले के ठीक विपरीत नादमयी प्रवाहमयी और ऐसी मृषीण शब्दावली सामने रखता है कि वैसी ही एक हवा पाठक के शरीर को भी सहलाती हुई हौले से बह जाती है। सरोज स्मृति की इन अंतर्विरोधी संरचनाओं को लेकर निराला पर प्रायः ही आक्षेप किए गए हैं, किंतु यदि हम मानवीय सहानुभूति के स्तर पर सोचें तो क्या ऐसा होना नितांत अस्वाभाविक है? और निराला के मानसिक विघटन का परिचायक है। यदि उनकी मानसिकता एकदम निरंकुश हो गई होती तो वह इस रचना के एक वर्ष बाद राम की शक्ति पूजा जैसी सुव्यवस्थित महाकृति कैसे दे पाते? वस्तुतः निराला सरोज स्मृति में लड़ रहे हैं अपने से भी और निर्मम स्वार्थी समाज से भी। ऐसी स्थिति में गंभीरता और अगंभीरता के परस्पर विरोधी शिल्प तथा भाषा को अपनाने के अतिरिक्त क्या कोई और विकल्प हो सकता है? शायद नहीं, बल्कि यह परस्पर विरोधी शिल्प ही सरोज स्मृति की प्राणवत्ता की रीढ़ है। सरोज स्मृति की भाषा के कई प्रारूप पैटर्न हैं, जो समग्रतः निराला ने काव्य भाषा के अनेक प्रारूप प्रस्तुत किए हैं और प्रत्येक प्रारूप विषय की प्रवृत्ति से संबद्ध रहा है, पर वह स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। सरोज स्मृति में कवि की वही बहुविध अभिव्यंजना की प्रवृत्ति सीमित परिवेश में प्रतिफलित हुई है। कटु और मृषीण भाषा प्रारूप दिए जा चुके हैं। दो और प्रारूप देखे जा सकते हैं। एक विवाह से संबंधित मध्यम वर्गीय रूढ़ शब्दावली, वे बड़े भले जन हैं भैया, पृष्ठ संख्या 114, एंट्रेंस पास है लड़की वा, बोले मुझसे 26 की तो, बोले मुझसे 26 ही तो वर्की है उम्र, ठीक ही है लड़की भी 18 की। यह बिल्कुल नई तुली व्यवहारिक भाषा है। दो मध्यम वर्गीय परिवारों में किसी की विवशता में सहारा देने के लिए कोई न कोई खड़ा हो जाता है, किंतु जब उसकी बात किसी मुद्दे पर कटती है तो वह अपना हाथ खींच लेता है। उसकी भाषा तब मीठी छुरी जैसी हो जाती है। सास ने कहा लख एक दिवस, भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम, डॉट डॉट डॉट। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो, ढूंढ कर वर, जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, होंगे सहाय हम सोत्साह। दोनों ही उद्धरण एक ही पात्र सासू जी के कथन हैं, किंतु प्रथम में जहाँ अतिरिक्त मिठास है, द्वितीय में उतनी ही अधिक निष्करुणता। इस प्रकार के अनेक भाषिक प्रारूप इस कविता में हैं जो निराला की भाषिक क्षमता का परिचायक देने वाले हैं। भाषा के संदर्भ में निराला की एक उल्लेखनीय विशेषता है शब्द का नए अर्थ में प्रयोग। राम की शक्ति पूजा की भाषा के प्रसंग में इस पर विचार किया जा चुका है। सरोज स्मृति में भी निराला का वह भाषिक वैशिष्ट देखने को मिलता है, बल्कि सरोज स्मृति से निराला की इस भाषिक पकड़ का जो परिचय मिला था राम की शक्ति पूजा में वह सुदृढ़तर हो गई है। विशिष्ट प्रयोग के कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। जन्म ब्रैकेट में जनक की जन्म से विदा अरुण, लक्षणा के आधार पर अर्थ जनित पुत्री, गीते गीते मेरी तज रूप नाम, श्लेष का आधार अर्थ गीता तथा गीतों में गाई गई या चित्रित। अध्याय जीवन के अष्टादश अध्याय, लक्षणा के आधार पर अर्थ वर्ष, निरानंद पर संपादक गण निरानंद लक्षणा के आधार पर अर्थ रसिक। शब्दों के व्यंग्यात्मक प्रयोग भी दृष्टव्य हैं। शुभ पढ़ लिखे हुए शुभ दो विवाह व्यंग्यार्थ, अवांछनीय अशुभ शिव, ऐसे शिव से गिरजा विवाह व्यंग्यार्थ, अशिव अमंगलकारी। प्रवर देखे हैं हंसते हुए प्रवर व्यंग्यार्थ, दम्भी बुजुर्ग साहित्यकार। विजातीय शब्द भी यत्र तत्र हैं। अंग्रेजी एंट्रेंस पास है लड़की वह, अरबी गो नहीं भीती। पृष्ठ संख्या 115। समग्रता सरोज स्मृति की भाषा तद्भव प्रधान सरल हिंदी, आगे चलकर इसी भाषिक प्रारूप से टकसाली हिंदी का रूप उभरता है जिसका श्रेय निराला को दिया जाना चाहिए। समास योजना स्मृति में बहुत कम है। जहाँ मानसिक बंध का आश्रय लेना पड़ा है वहाँ छोटे छोटे समास हैं और वह उन्हीं प्रसंगों में हैं जहाँ निराला गंभीर हैं, यथा आरंभ में सरोज के निधन का उल्लेख, जीवन सिंधु तरण ज्योति शरण तरण आदि, आगे साहित्यिक संघर्ष शरक्षेप रण कौशल, सरोज का यौवन आगमन कुंज तारुण्य लावण्य भार, विवाह प्रसंग श्रृंगार मुखर विश्वास स्तब्ध आदि प्रकट हैं कि सामासिक शब्द बंधों के स्थल थोड़े हैं और समास भी छोटे छोटे हैं। राम की शक्ति पूजा की तुलना में तो इसे समासहीन या हिंदी भाषा की व्यूहात्मक प्रकृति की परिचायक रचना कहना अधिक उपयुक्त होगा। निराला विभिन्न स्थलों पर शब्दों के प्रयोग में अपने विशिष्ट भाषा अधिकार का परिचय देते हैं। यौवन आगमन के प्रसंग में प्रांगण और कुंज शब्दों के प्रयोग में उनकी यह प्रतिभा देखी जा सकती है। प्रांगण खुला खुला होता है, अतः वह बाल्यावस्था की उन्मुक्त क्रीड़ाओं के लिए उपयुक्त उपमान है। इसके विपरीत यौवन आगमन काल की अनुभूतियाँ निगूढ़ तथा लज्जा के उदय के कारण गोपनीय हैं, अतः उसके लिए कुंज जैसे सटीक शब्द रखा गया है। इसी प्रकार चमरौधे जूते और शिव के परस्पर विरोधी बिंबों के संयोजन से निराला ने विसंगति का चमत्कार करके व्यंजना शक्ति के आधार पर उसका जैसा निराकरण किया है वह भी अभिव्यंजन क्षमता का परिचय देने वाला है। चमरौधा एक भेदस बिंब है। गांवों में ग्रामीण चर्मकारों द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए बनाया गया वह जूता जिसके चमड़े का अत्यंत परिष्कार किया जाने के कारण उसे तेल पिलाकर पहन सकने योग्य नर्म बनाया जाता है। आधुनिक नागरा जिसका सुप्रकृत संस्करण है शिव, जब व्यंजना से उसका अर्थ अशिव और भदेश निकलता है, यो निराला में अविधा का ही सौंदर्य है। यदा कदा लक्षणा और व्यंजना के उदाहरण मिल जाते हैं जो अपनी सटीकता के कारण अविधा के सौंदर्य को और चमका देते हैं। यमक और श्लेष शब्द अलंकार भी उनकी भाषा में चमत्कार की सृष्टि करते हैं। कहीं कहीं अप्रचलित शब्द भी ऐसा ही भाव उत्पन्न करते हैं। दधिमुख एक ऐसा ही शब्द है जो अब तक हिंदी कोशों में नहीं आ पाया है। इसके अर्थ के लिए मुझे मोनियर विलियम्स का संस्कृत अंग्रेजी कोश देखना पड़ा जिसमें इसका अर्थ मिल्क फेस्ट दिया गया है। लक्षणा से अर्थ निकलता है सुखी संतुष्ट और प्रसन्न। अर्थालंकार का सौष्ठव तो बढ़ाते ही हैं, वह अभिव्यक्ति और भाषा को भी नई दीप्ति देते हैं। सरोज स्मृति में सादृश्य और साधर्म्य मूलक अप्रस्तुत विधान अधिक हैं और अच्छे बन पड़ते हैं। कनक ज्यों भिक्षुक लेकर वह जो यमुना के से कछार, उधार खाए के मुख ज्यों ज्यों भोगावती उठी अपार, होठों में बिजली फसी स्पंद। कहना ना होगा कि निराला के अप्रस्तुतों में पर्याप्त वैविध्य है। प्रथम तीन पंक्तियों के अप्रस्तुत गैर छायावादी हैं, उनके प्रयोग की सटीकता का अपना अलग महत्व है। रूपक का भी उपयोग सर्वज स्मृति में हुआ है, मृत्यु तरण, जीवन सिंधु, कुंज तारुण्य आदि, किंतु अपने प्रयोग आधिक्य के कारण अलंकृति का यह उपकरण अपनी शक्तिमत्ता और चमक खो चुका है। अब तो यह सहज अभिव्यक्ति का अंग बन गया है, जिसकी ओर सासा ध्यान नहीं जाता। हाँ, जहाँ रचनाकार इसे सांकेतिक बिंब के रूप में इस्तेमाल करता है, वहाँ अभिव्यक्ति के नएपन का अनुभव अवश्य होता है। मिसाल के तौर पर सर्वज स्मृति के एक तरफा युद्ध का बिंब लिया जा सकता है, जिसमें प्रतिपक्ष केवल संकेतित होता है। सांग रूपक बांधने पर इसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। समग्रता कह सकते हैं कि सर्वज स्मृति की काव्य भाषा अविधा प्रधान तथा बिंबात्मक है, जिसकी अभिव्यक्ति क्षमता के संवर्धन में लक्षणा व्यंजना शक्तियों और अलंकृति के उपकरणों का यथोचित योगदान रहा है। और यह भी कि हिंदी का टकसाली रूप जिन कविताओं के माध्यम से उभरा है, उनमें सरोज स्मृति का विशिष्ट स्थान है।